साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुकर। आज विश्व लोकतंत्र दिवस पर हमारे साथ मोबाइल वाणी के मंच पर आमंत्रित है समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी। नमस्कार ठाकुर साहब
जी। नमस्कार दिनकर जी, मोबाइल वाणी को नमस्कार।
ठाकुर साहब, हम आपके विश्व लोकतंत्र दिवस के अवसर पर जानना चाहते हैं कि आदर्श लोकतंत्र के लिए विपक्ष कितना जरूरी है।
दुर्गा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं के लिए विश्व लोकतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, इस आशा के साथ कि दुनिया में लोकतंत्र अपने अच्छे स्वरूप में कायम रहे और फलता फूलता रहे। अब जहां तक लोकतंत्र की बात है, तो मैं चाहूंगा कि चूंकि विश्व का लोकतंत्र दिवस है, थोड़ी सी चर्चा हम लोग ऐतिहासिक संदर्भ में भी करें कि जब इस आधुनिक लोकतंत्र के तो कई प्रकार की लोग चर्चाएं करते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भारत के कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ वैशाली का गणतंत्र था, वो भी लोकतंत्र था, और हमारे अतीत में लोकतंत्र था। हालांकि राजतंत्र में या गणतंत्र में और आज के लोकतंत्र फर्क है। किसी भी राजतंत्र के कार्यकाल में कोई निर्वाचित व्यक्ति सत्ताधीश नहीं होता था। अब जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में मतदाताओं के माध्यम से, उनकी राय के माध्यम से लोग चुन के आते हैं। इसकी एक अवधारणा तो इब्राहिम लिंकन ने दी थी, जिन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये लोकतंत्र की एक परिभाषा थी कि जो लोकतंत्र है, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का है। लोकतंत्र की दूसरी परिभाषा हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी देखने को मिलती है कि जहां एक बाहर तख्ती लगी हुई रखा हुआ है कि अगर आप मेरा सर भी फोड़ेंगे, पर मैं आपके मानव अधिकारों की रक्षा करूंगा। अभी दो बातें मैंने आपको से कही, ब्रिटिश पार्लियामेंट की और इब्राहिम लिंकन की, कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की क्या स्थिति होना चाहिए और प्रतिपक्ष के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, इन दोनों बातों से जाहिर होता है। आज भारत में जो लोकतंत्र है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, निस्संदेह सरकारें चुन के आ रही है और एक भारतीय संविधान है, जो संविधान में लोकतंत्र का प्रावधान है, कुछ न कुछ कानून नियम बनाए गए हैं, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि एक दलीय और एक व्यक्ति लोकतंत्र देश में चल रहा है। तो व्यक्ति का लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं होता है, व्यक्ति का लोकतंत्र अंततः एक प्राय तानाशाही होती है। आज हिंदुस्तान की संसद की स्थिति है कि हिंदुस्तान की संसद में सरकार है, परंतु विपक्ष नाम की कोई चीज वहां कमजोर है वो अलग बात है, पर रहने भी नहीं जाती है। अब जैसे ये जो चुनाव, पिछली बार का जो चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव 2019 में, उसके बाद में जो सबसे बड़ी पार्टी थी संसद में विरोध के रूप में, वो कांग्रेस पार्टी थी। यद्यपि कांग्रेस पार्टी की संख्या 10% से कम थी, और इसलिए तकनीकी रूप से जो परंपरा बनाई गई थी कि प्रतिपक्ष की मान्यता उसको दी जाएगी जिसके पास में कम से 10% वोट हो, पर अगर मान लो किसी के भी पास नहीं है, तो दूसरा उसका तरीका हो सकता था कि जो बकाया समूह है, जो उनके समर्थ यानी एक प्रकार महागठबंध बना हुआ है, तो जो लोग मिलकर लड़ते हैं उनका, या जो लोग सरकार के खिलाफ में है उन सबके बीच में से कोई व्यक्ति बोलते कि भाई आप अपना एक नेता चुके भेज दीजिए जो प्रतिपक्ष नेता होगा, या फिर आप उस परंपरा को, चूंकि कोई कानून नहीं है, परंपरा है, तो उसको शिथिल करते हुए परंपरा को थोड़ा बदल करके आप नेता प्रतिपक्ष के लिए स्थान देते। परंतु भारत सरकार ने कभी भी किसी व्यक्ति के लिए पिछले साढ़े चार पांच साल हुए को आए हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में उस ढंग से दल को मान्यता नहीं दी। तो प्रतिपक्ष के लिए तो सरकार ने माना ही नहीं, तो जब सरकार प्रतिपक्ष को मान ही नहीं रही है, तो प्रतिपक्ष की स्थिति क्या होगी। दूसरी स्थिति क्या है कि संसद की जो कार्रवाई है, लोकतंत्र में संसद की कार्रवाई बहुमत से निर्णय तो करती है, परंतु अच्छा लोकतंत्र तब होता है जब संसद आम राय से कोई कानून बनाती है और विपक्ष के विरोध का भी सम्मान करती है। मैं आपको इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। मुझे इस पर है कि एक बार भारत सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया था और उस समय प्रधानमंत्री के पद पर मनमोहन सिंह जी थे, और उस प्रस्ताव में कहा था कि जो देश की संचार कंपनियां हैं, सरकारी सरकार कंपनियां, BSNL वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब का निजीकरण कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर से एक संसद विरोध हुआ, संसद में विपक्षी लोगों ने कहा, भाजपा के लोगों ने कहा कि साहब नहीं, इसके लिए पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। तो सरकार ने संसदीय समिति बना दी। उस संसदीय समिति का जो चेयरमैन थी वो श्रीमती सुषमा स्वराज थे, और चतुरानंद मिश्र जी थे जो उस कमेटी के एक प्रकार के कहना चाहिए प्रमुख स्तंभ थे। उस कमेटी ने हमको अपनी बात को लेकर बुलाया था। वहां कमेटी की चर्चा में हमने सिद्ध करने का प्रयास किया था कि इन कंपनियों को जो घाटा है, घाटा कोई तार्किक कारण से नहीं है, बल्कि एक प्रकार का प्रशासनिक अव्यवस्था है। इसलिए सरकार की संस्थाओं को या सरकार की संपत्ति को खत्म नहीं करना चाहिए। तो भारत सरकार ने प्रतिपक्ष की बात को मान करके और संसदीय कमेटी की बात को मान करके उस प्रस्ताव को टाल दिया। हालांकि बाद में वही भाजपा सरकार जब आई तो उसने उसी प्रस्ताव को लागू कर दिया। ऐसे अनेक मामले हैं कि जिनको भारत सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिरोध होने पर, विरोध करने पर उनको रोक दिया, उन कानूनों को नहीं बनाया, और बाद में वो कानून इस सरकार ने बना लिए। GST का कानून है, आपको याद है कि खुद प्रधानमंत्री जी ने GST का विरोध किया था और उसे जजिया कर कहा था। जब ये सरकार आई तो सरकार ने प्रतिपक्ष की चर्चा ही नहीं की, न कोई पूछा उसके लिए, अपना कानून पारित कर दिया। तो आज जो सरकार है, सरकार के मस्तिष्क में लोकतंत्र नहीं है और प्रतिपक्ष को वो नहीं मानती है, वो प्रतिपक्ष को समाप्त करना चाहती है। हर प्रकार के हथकंडे भारत सरकार के द्वारा है, चल रहे हैं कि जो प्रतिपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं संसद के भीतर, संसद के बोलने के सवाल को लेके। अब अभी एक घटना आपको ताजी सुनाऊं, जो इसी से जुड़ी हुई घटना है कि जब राज्यसभा में चर्चा होने वाली थी इसके बड़ीपुर के बारे में, तो वहां पर जो प्रतिपक्ष के दलों के सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब इस पर पहले प्रधानमंत्री का बयान होना चाहिए। और इसको लेकर के वो कुछ सर, जब सभापति ने उसको नहीं माना या उसको उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने कुछ आक्रोश हुई, कुछ लोग बेल में भी आ गए। अब दो सवाल उठते हैं। एक तो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी को कोई प्रश्न का जवाब पहले देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, या केवल कोई प्रस्ताव आए उसके बाद उत्तर ही देना चाहिए। मेरी राय है कि अगर प्रधानमंत्री संसद की जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की संस्था है, लोकतंत्र की जिसको जननी माना जाता है, यानी मतदाता के बाद में अगर कोई लोकतंत्र की जननी या रक्षक है तो संसद होती है, तो संसद में कोई अगर घटना घटती है तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की एक जवाबदारी होती है कि राष्ट्रपति को जाके ब्रीफ करें, बताएं, भले संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार राष्ट्रपति की होती है, परंतु चूंकि प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की पद्धति है, संसदीय पद्धति है, तो प्रधानमंत्री जाके राष्ट्रपति को कहते हैं, बताते हैं क्या घटना हुआ है। अगर प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में आके अपना बयान देते क्या मणिपुर की घटना ये हुई है, हम ये काम कर रहे हैं, हमारी ये कार्रवाई हो रही है, तो शायद ये सवाल नहीं होता। परंतु उस विरोध मात्र से उन्होंने जो विरोधी दलों के सांसद लोग थे उनके लिए निलंबित कर दिया, राज्यसभा वालों को निलंबित कर दिया। और कानून नियम में कहता है पार्लियामेंट का 256 का कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका निलंबन उसके उस सत्र के आखिरी दिन तक ही हो सकता है, परंतु उसको भी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला कि चूंकि संजय सिंह एक मुखर विरोधी उनके हैं तो उनको रोकने के लिए तरीका निकाला कि एक पत्र भेजा कि आपकी मामले को हमने प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया है, विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है, और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक आप निलंबित रहेंगे, यानी सत्र भी निकल जाएगा, अगला सत्र निकल जाएगा, चुनाव आ जाएंगे फिर देखा जाएगा। तो हिंदुस्तान की सरकार के दिमाग में लोकतंत्र नहीं है और वो प्रतिपक्ष को संसद के या संसदीय मंचों के पटल से या विधानसभा में खत्म करना चाहती है। अब दूसरी भी बात है कि लोकतंत्र का मतलब जहां एक तरफ संसद की आजादी है, संसद के मेंबरों की आजादी है, वहां जनता के संवैधानिक अधिकार भी लोकतंत्र के एक प्रकार से अकाट्य हिस्से हैं। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हमको संगठन बनाने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु मैं देख रहा हूं कि चाहे दिल्ली की अभी की भाजपा सरकार हो या पहले कांग्रेस सरकार रही हो, राज्यों में कहीं भाजपा की सरकार है कहीं कांग्रेस सरकार है, सब जगह पे जो लोकतांत्रिक स्थान है या लोकतंत्र के जो प्रावधान है वो कमजोर किया जा रहा है। आज दिल्ली में अगर आपको धरना देने जाना है, हमें अपनी बात कहना है, हमें सरकार से प्रतिरोध जाहिर करना है, हमें धरना देना है, तो हमें इसके लिए मंजूरी देना पड़ेगी। मंजूरी के लिए जहां स्थान दिया जाता है जंतर मंतर पर, उस स्थान को चारों ओर से सुरक्षा की मशीनों से बंद कर दिया गया है कि अगर आपको जाना है तो एक एक व्यक्ति इस मशीन से गुजर के जांच करा करके, जैसे कोई हवाई अड्डे पर जांच हुई, जांच करके जाइए। अब बताइए कि हम आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं, आंदोलन करने वाले के जाके पहले ढाबा तलाशी लेना है, देना है कि साहब पजामा देख लो, कुर्ता देख लो, चड्डी देख लो, अंडरवियर देख लो, फिर मशीन में से निकलना है। काहे का धरना पे, तो काहे का आंदोलन रहेगा, काहे की स्वतंत्रता रहेगी? और यही स्थिति धीरे धीरे राज्य में बढ़ गई है। आज भोपाल में मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार है, वहां अगर आपके लिए कोई आंदोलन करना हो तो बड़ा कठिन काम है, अनुमति नहीं मिल पाती है। यही स्थिति मैं छत्तीसगढ़ में है, मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ, अभी 3 दिन धमतरी में रह के आया हूँ। वहां आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धरना था, हजारों आदिवासियों उसमें आए थे। हमने रायपुर में सरकार से पत्र के सूचना दी, मांगी, कहा कि भाई हम लोग यहाँ 3 दिन का धरना करना चाहते हैं, जो समस्याएं आदिवासियों की उनकी आपके सामने लाना चाहते हैं। सरकार ने मंजूरी नहीं दी। और क्या चालाकी की 13 तारीख के सुबह से धरना शुरू होना था, 12 तारीख की रात को 11 बजे पत्र भेजते हैं कि आपको कल सुबह से 1 दिन के पानी होती है। आप बताइए कि जंगल के से 200 किलोमीटर दूर से, बस्तर से, स्यावा से, कांकेर से खिचल के कैसे आदिवासी आ पाएगा? और फिर हमको 3 दिन का धरना जो है वो धमतरी में करना पड़ा। तो सारे जगह है, वो सरकारें कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, वो तेलंगाना पार्टी की हो, या कोई सरकार हो, मैं देखा हूँ कि सारी सरकारें लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को कैसे रोकना है इस काम में लगी हुई है। सारे नियमों के लिए बदला जा रहा है, प्रशासन तंत्र निरंकुश हो गया है, पर नौकरशाही निरंकुश हो गई है, नौकरशाही किसी की सुध को तैयार नहीं है, और जो दायित्व है उनके संवैधानिक दायित्व कोई पूरा करने को तैयार नहीं है। तो ये स्थितियां हैं, तो लोकतंत्र की स्थिति देश में, दुनिया में कमजोर हो रही है, देश में कमजोर हो रही है। अब इसके लिए मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता थे, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आप जानते हैं
जी।
डॉक्टर लोहिया ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा था जो महात्मा गांधी के विचार के अनुकूल था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में बालिग मताधिकार से चुनी हुई विश्व संसद बनना चाहिए। अगर विश्व संसद बन जाए तो फिर जो संस्थाएं दुनिया की वैश्विक संस्थाएं उनकी भी उपयोगिता हो जाएगी, और आज जो लोकतंत्र का क्षय हो रहा है इस क्षय के ऊपर भी रोक लगेगी। तो एक ऐसी कल्पना दुनिया के लिए चुने हुए लोगों की बालिग मताधिकार चुनी हुई निर्वाचित संसद दुनिया की बने, ऐसी बन जाए तो दुनिया से युद्ध खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र के संकट खत्म हो जाएंगे, और कोई भी दुनिया का एक देश लोकतंत्र खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक वैश्विक संतुलन, शक्ति संतुलन कायम हो जाएगा। जी
भाई साहब
जी,
जैसा कि आपने अपने शब्दों में अभिव्यक्ति की बात कही है और लोकतंत्र के 3 अंग कहलाए जाते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा अंग प्रेस यानी कि मीडिया को माना गया है।
जी,
और अभी हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ, उसमें विदेशी पत्रकारों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई, क्या यह प्रेस की अभिव्यक्ति का उल्लंघन नहीं है?
अरे विदेशी पत्रकारों को तो अनुमति नहीं दी गई, क्या देशी पत्रकारों को दी गई?
जी नहीं,
तो बताइए। अरे भाई कोई देशी पत्रकार भी नहीं फटक पाया,
तो क्या यह अभिव्यक्ति का उल्लंघन नहीं है?
ये संविधान का उल्लंघन है, ये लोकतंत्र की अवमानना है, हिंदुस्तान की सरकार की निरंकुशता है, और पूरी दिल्ली लगभग 8 दिन, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ में, कि 5 तारीख से 4 तारीख से लेकर के और लगभग 10 तारीख तक पूरी दिल्ली कैद थी। यानी लोगों को घर से निकलना, ड्यूटी पे जाना और आना एक प्रकार की लाचारी जैसी हो गई, परेशानी जैसी हो गई थी। हमारे एक मित्र हैं, वो एक बड़े इंजीनियर के पद पर काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम अपने दफ्तर में गए, 24 घंटे हमारी ड्यूटी लगा दी गई, 24 घंटे कि आपको सुबह 6 बजे आके अगले दिन सुबह 6 बजे जाना है। पर दिन में कोई खाने की व्यवस्था नहीं, दिन में कहीं खाना नहीं मिला, रात में खाना नहीं मिला, और जब वो अगले दिन सुबह चलने लगे तो उन्होंने अपनी कार निकाली, तो बोले नहीं कार से आप नहीं जाएंगे, आप पैदल जाइए। और उनको अपनी कार को छोड़ करके वहां से पैदल ना पड़ा और जब मेट्रो कहीं पकड़ करके घर पे पहुंच पाए। यानी एक व्यक्ति को समझिए के करीब कई मोटा मोटी तौर पर 30 घंटे तक भूखा रहना पड़ा है। वहां के जो पुलिस के कर्मचारी थे उन पुलिस के कर्मचारियों से 24-24 घंटे ड्यूटी ली गई। अभी प्रधानमंत्री जी नाटक कर रहे हैं कि हम पुलिस वालों के साथ में खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे जो लोग ड्यूटी पर थे, परंतु 3-3 दिन पुलिस को खाना नहीं मिला। जबकि ये नियम है, परंपरा हो रही है, मैंने देखा है, कर्फ्यू लगता है, पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, कोई बड़ी घटना होती है पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है, तो सरकारी के पुलिस के ट्रक में खाना लद के आता है और खाना उनको पैकेट दिया जाता है। क्या इनको खाने का पैकेट नहीं मिल सकता था? पर सारी दिल्ली कैद कर दी गई थी, सारी दिल्ली को बंद कर दिया गया था और लोकतंत्र खत्म था। ना पत्रकारों को अनुमति थी, देशी को विदेशी को, ना जनता को कोई निकलने की, यानी घरों से निकलने की रीति नहीं थी। वो प्रधानमंत्री जी ने पहले बयान दे दिया कि दिल्ली की जनता को तकलीफ होगी, मैं आपसे खेद व्यक्त करता हूँ। भाई क्यों तकलीफ होगी? क्या दुनिया के किसी और देश में G20 नहीं हुआ? G20 की अध्यक्षता एक साल में होती है। पिछले साल G20 की अध्यक्षता थी इंडोनेशिया के पास। आप पता कर लीजिए कि इंडोनेशिया में कभी जो बैठकें हुई, मीटिंग हुई, एक भी दिन कभी इंडोनेशिया को या उसकी राजधानी को बंद नहीं किया गया, बाली को बंद नहीं किया गया। अभी आप देख लीजिए कि अभी लूला जी के लिए, ब्राजील के लिए अगली अगली अध्यक्षता सौंप दी गई है। इससे कोई एक साल पूरा हो गया है, अगले अध्यक्ष वो रहेंगे, अध्यक्षता लोटे से चलती है। आप देखिए कि ब्राजील में कभी भी G20 की मीटिंग हुई तो एक दिन को भी बंद से लगाई जाएगी, परंतु सारी दिल्ली को बंद कर दिया। आप मीडिया की चर्चा कर रहे हैं, आज ये हालत है मीडिया की कि दिल्ली की सरकार के प्रधानमंत्री तो बरसों बरसों से, यानी मेरे ख्याल से शायद पिछले 9.5 सालों में एक आध बार कभी उन्हें दर्शन दिए हो मीडिया को, सीधे तो अलग बात है, नहीं तो नीचे एक संस्था है उनकी, अपनी जेब की संस्था है, उसको अपने जो कहना कह देते हैं वो बांट देती है, वो निकलते नहीं। आजकल यही चीज धीरे धीरे राज्यों में हो रही है, मुख्यमंत्रियों की हो रही है। पत्रकारों की स्थिति यह है कि जिला मुख्यालयों के कलेक्टर लोग हैं वो पत्रकारों से बात करने को तैयार नहीं। मैं छत्तीसगढ़ के मैं दौरे पर लगातार कई दिनों से हूँ, एक सप्ताह मुझे यहाँ होने के लिए आ गया है। मैं दुर्ग में गया, दुर्ग के पत्रकारों ने कहा कि साहब यहाँ का जो कलेक्टर है वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं या बातें नहीं करते हैं। धमतरी में एक बार पत्रकार ने बताया कि साहब हम लोग कलेक्टर के यहाँ गए कुछ सवाल पूछने के लिए, उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो, बाहर निकाल दिया, पुलिस के दम पर बाहर निकाल दिया। रायपुर में पता किया, वहां के पत्रकारों से कोई बात नहीं सकती है, जनता से आपको मिलना नहीं है, तो लोकतंत्र काय का है? ये तो एक प्रकार का नव राजतंत्र आ गया है जिसमें सीधी सत्ता का मुखिया मुखिया है और बकाया सारे की सारा जो तंत्र है वो तंत्र है, प्रशासन और लाठी है, तो ये लोकतंत्र नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने विश्व लोकतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की और किस तरह लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है इस संबंध में अपनी महत्वपूर्ण बात रखी। यहाँ थे वरिष्ठ पत्रकार रघु ठाकुर जी।
दिनकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मोबाइल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप उन पीड़ाओं को देश तक लोगों तक पहुंचाते तो हैं कि जिनसे लोकतंत्र देश गुजर रहा है। धन्यवाद।
धन्यवाद जी।